दूसरा सैमुअल अध्याय 24, अध्याय 24 पद 1 और 2। और यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा कि इसराइल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बर्शेबा तक रहने वाले सब इसराइली गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। अब योआब ने गिनती करने की बात का अधिकार पूर्वक विरोध किया। उसने कहा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि कितने लोग हैं? परमेश्वर तुम्हें 100 गुना ज्यादा लोग दे सकता है। तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास कितने हैं? परंतु दाऊद ने उनकी गिनती पर जोर दिया। परमेश्वर जनगणना के विरुद्ध था। सच्चाई ये थी कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं इब्राहिम का वंश समुद्र की बालू के समान और आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, अर्थात असंख्य। अब दाऊद परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध लोगों की जनगणना कर रहा था, उनकी गिनती जानना चाहता था, जो कि असल में एक तरह से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करना था। उसने कहा था कि मैं उन्हें तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि वे असंख्य न हो जाएं। अतः ये परमेश्वर को एक चुनौती थी। लेकिन दाऊद ने घमंड में आकर, कारण जो भी हो, यहूदा और इसराइल दोनों जगह के योद्धाओं की संख्या जाननी चाहिए। अतः उसने योआब को नियुक्त किया कि सारे राज्य में जाएं और सबकी गिनती करें। योआब को सारे देश में जनगणना करने में 9 महीने लगे। जब वो 9 महीने बाद वापस आया तो उसने जाना कि यहूदा में 5 लाख और इसराइल में 8 लाख योद्धा है। अध्याय 24 पद 10। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, और दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अतः दाऊद ये करने के बाद मानता है कि उसने मूर्खता की है, पाप किया, और वो क्षमा मांगता है। अध्याय 24 पद 12 से लेकर 17 तक। कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उसे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, मैं बैरियों के हाथ में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वे निर्दयी हैं। हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, इसलिए महामारी से पीड़ित होना अधिक उत्तम है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इसराइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाया रहा, और दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के कलियान के पास था। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। परमेश्वर, ये मैं था, पाप मैंने किया था, इन लोगों ने क्या किया है? ये तो निर्दोष भेड़ है, इन्होंने कुछ नहीं किया। दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। दरअसल अगर आप पहले पद में जाएं, जहां परमेश्वर उनके धर्म त्याग के कारण इसराइल से नाराज था, परमेश्वर ने इसराइल के विरुद्ध ये चाहा था। अध्याय 24 पद 18 से लेकर 24 तक। उसी दिन गाद नबी ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वो वचन मानकर वहां गया। जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझ से ये कलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि ये व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे, ये सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे आवश्यक दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। मैं सोचता हूं कि दाऊद का ये एक नियम बहुत दिलचस्प था। हम परमेश्वर को बलि चढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमें क्या बलि चढ़ाना है। बहुत कम लोग सही मायने में बलि के रूप में परमेश्वर को कुछ देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी बहुतायत में से देते हैं। बहुत कम लोग परमेश्वर को बलिदान देते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर को वो देते हैं जो हमें कीमती नहीं लगता। ये बेकार है, परंतु मैं उसे दूर नहीं कर सकता। यदि ये मुझसे दूर किया जा सकता तो मैं इसे परमेश्वर को देने के बारे में दो बार सोचता। दरअसल बहुत कम लोग परमेश्वर को सच में वो बलिदान देना चाहते हैं जो उनके लिए कीमती हो। सच्चाई तो ये है, और मैं ऐसा समझता हूं कि गरीब सचमुच में अमीर से ज्यादा परमेश्वर को देते हैं। जब यीशु अपने चेलों के साथ मंदिर में लोगों को दान देते हुए देख रहा था, तब एक अमीर आदमी ने बड़ा दान दिया और लोगों ने खड़े होकर उसकी तारीफ की। फिर एक गरीब विधवा आई और अपना छोटा सिक्का दान में डाल दिया, जो कि आज एक पैसे के बराबर। और जब इस विधवा ने अपना ये सिक्का डाला तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुमने देखा, इस विधवा ने सारे लोगों से ज्यादा दान दिया है। प्रभु, तू क्या कह रहा है? तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम देखो, उसके पास जितना था उसने वो सब दान में दे दिया। उसके पास वही था सबसे कीमती, और बाकियों ने अपनी बहुतायत में से दिया है। उनको इस दान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी बचत में से दिया, परंतु इसने वो दिया जो उसके पास था। परमेश्वर इसी को आंकता है, इसलिए गरीब लोग परमेश्वर के राज्य में अमीर होंगे, क्योंकि वे परमेश्वर को वो देते हैं जो उनका सबसे कीमती है। वे अपनी जीविका में से देते हैं, जबकि अमीर के दान को आप देकर ज्यादा कहते हैं। परमेश्वर पैसों को नहीं गिनता। परमेश्वर देखता है कि देने में आप क्या कीमत चुका रहे हैं। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर को वो नहीं दूंगा जो मुझे मुफ्त में मिले। मैं सोचता हूं ये एक उत्तम या श्रेष्ठ नियम का उदाहरण है कि परमेश्वर को देने में हमें कुछ कीमत चुकाना चाहिए ताकि ये सच्चा बलिदान देना हो। अध्याय 24 पद 24 और 25। सो दाऊद ने कलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इसराइल पर से दूर हो गई। इस कारण इस समय के बाद इसराइल में फिर कभी जनगणना नहीं हुई। नियम के अनुसार हरेक आदमी को प्रतिवर्ष मंदिर के खजाने में 1 शेकेल डालना होता था और वे शकेल को गिनकर जान लेते थे कि कितने लोग हैं, लेकिन उन्होंने इसके बाद मनुष्यों की गिनती कभी नहीं की। कुछ हफ्तों पहले हम इसराइल में थे। हमारा गाइड को कुछ नैतिक कर्तव्यों को पूरा करना था और वो हमारे साथ भी रहना चाहता था। उसने कहा, मैं जाकर रबी से बात करूंगा। आप जानते हैं वो हमेशा कानून में कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जी हां, यही वो बात थी जिसकी यीशु हमेशा शिकायत करता था कि कैसे उन्होंने रीति बनाई थी कि कानून को धोखा दे सके। इसलिए आज भी वे यही कर रहे थे। वे रीति बनाते थे कि कानून को धोखा दे सके। सबत के दिन आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आप सबत के नियम को तोड़ते हैं। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं है और आप कोई नियम नहीं तोड़ते हैं। रबी ने कहा, ठीक, अगर तुम इसे इस तरीके से करो तो तुम कानून को नहीं तोड़ते। इसलिए आज भी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की बस्ती में वे गिनती को अस्वीकार करते हैं। अब अगर आप किसी पार्टी में हैं और आप लोगों को नहीं गिन सकते, तो आपको ये जानने के लिए कि कमरे में कितने लोग हैं, एक खेल खेलना होगा। आप कहें, अच्छा तुम 1 नहीं हो, तुम 2 नहीं हो, तुम 3 नहीं हो, तुम 4 नहीं हो, तुम 5 नहीं हो। अतः आप उन्हें गिन नहीं रहे हैं। हर बात में एक रास्ता है। यह दुख की बात है कि दाऊद के जीवन का अंत एक त्रासदी था, लेकिन बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद उसे उसका प्रतिफल भी भुगतना पड़ा था, चाहे भविष्यद्वक्ता ने कहा था परमेश्वर ने तो पाप क्षमा कर दिया है, परंतु फिर भी तलवार तो तेरे घर से कभी दूर न होगी, तेरे अपने बच्चे तेरे विरुद्ध उठेंगे। सबसे पहले अबशलोम उसके विरुद्ध उठा, फिर अदोनिया उसके विरुद्ध उठा, उत्तरी गोत्रों ने विद्रोह किया, पिलिस्तियों ने आक्रमण किया आदि। हां, वो क्षमा कर दिया गया, परंतु अपने पाप की कीमत जो उसने चुकाई वो बहुत थी। अतः हमें पाप करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यह ठीक है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, परंतु कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है वो बहुत अधिक होती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने वचन को पढ़ने का मौका दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम वचन के प्रकाश में चले। पिता, हमें अपनी योजना, अपने उद्देश्य और अपने प्यार को, जिसे तूने हमारे हृदयों पर अपने वचन के द्वारा लिखा है, उसे संपूर्णता से समझने की शक्ति दे। परमेश्वर, होने दे कि हम अपने आप को, अपने जीवनों को जांचें, ताकि हम तेरे सामने पूरी सतर्कता से चल सके। पिता, हमारी मदद कर कि हम अपने दान देने को जांचें, हमारी मदद कर ताकि हम अपनी कीमती वस्तु को दान में दे ना कि उसे जो हमारे लिए बेकार है। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अपने प्यार, अपनी आत्मा, अपने अनुग्रह से भर दे ताकि आपके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें दिखाई दे जिनसे आप मिलते हैं। आप दूसरों के साथ अपने संबंधों में यीशु मसीह का स्वभाव और आत्मा प्रकट कर सके ताकि आप वैसे ही चल सके जैसे वो चलता था। यीशु के नाम में आमीन।